So much love, so much love. An ordinary man holding out an ordinary hand with so much love, so much love. Moving inside, feeling myself coming alive. He's helping me to see that there's nothing I need to. Namaste, namaste, namaste. Osho.
नमस्ते फ्रेंड्स, ओशो रेडियो में हम सबका हार्दिक स्वागत. आज के एपिसोड में हम ओशो डिस्कोर्स साहिब मिल साहिब भावे वॉल्यूम नंबर 5 से सुनेंगे, जिसमें ओशो हमें स्वयं की पहचान के प्रति जगा रहे हैं. आइए आगे बढ़ते हैं ओशो के जागरण जगत में.
तुम्ही बजरे माना, तुम्ही जपरे माना. ॐ श्री राम जय राम, जप रे मना. तुम्ही भज रे मना, तुम्ही जप रे मना. ॐ श्री राम जय राम, जप रे मना. तुम्ही भज रे मना, तुम्ही जप रे मना. ओम श्री राम जय राम, जप रे मना. तुम्ही भज रे मना, तुम्ही जप रे मना. ओम श्री राम जय राम, जप रे मना. तुम्ही भज रे
इतना मैं तुमसे कह दूं कि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वह कुछ भी करे तो पाप है। वो कितनी ही नेक नियत से करे तो भी उससे पुण्य नहीं हो सकता। आत्म अज्ञान की दशा में जो भी कुछ किया जाएगा वह सभी गलत हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि भीतर अंधेरा है, उसी अंधेरे से तो कृत्य निकलेंगे तुम्हारे। इसलिए तो मैं नीति का बहुत पक्षधर नहीं हूं, क्योंकि मेरी मान्यता है नीति का अर्थ होता है भीतर अंधकार है रहने दो, ऊपर से चूना पोत लो। जीसस ने कहा है तुम्हारे पंडित पुरोहित ऐसे हैं जैसे चूने से ताजे ताजे चूने से पोती गई कब्रें, भीतर लाशें सड़ी पड़ी हैं और ऊपर चूने से पोती हुई सुंदर सुंदर कब्रें, उन पर जलाओ समाएं, उन पर चढ़ाओ फूल, उन पर उगा दो गुलाब, सब झूठा है। उड़ाओ सुगंधें, धूप दीप बालो, सब व्यर्थ है, भीतर सिर्फ मुर्दा है। तुम कितने ही अच्छे कृत्य करो, कितने ही पूजा, कितने ही पाठ, यज्ञ हवन, सब क्रियाकांड रह जाएगा, क्योंकि भीतर अंधेरा है। और तुम कहीं भी जाओ तुम गलत जगह ही पहुंचोगे। तुम्हें यही पता नहीं मैं कौन हूं, तो तुम कदम कैसे उठाओगे, दिशा कैसे चुनोगे? तुम नींद में चल रहे हो। पहली बात, सबसे मौलिक बात, सबसे आधारभूत बात, स्वयं को जानना है। और स्वयं को जानने की विधि साहस चाहती, दुस्साहस चाहती। गौरी शंकर पर चढ़ जाना कठिन नहीं और न चांद पर पहुंच जाना कठिन। आखिर आदमी पहुंच ही गया। सर्वाधिक कठिन यात्रा है अपने भीतर आने की, कई कारणों से। पहली बात, वही व्यक्ति स्वयं के भीतर पहुंच सकता है जो नितांत अकेला होने को राजी हो। और वहां हमारी छाती कपती, हम भीड़ भाड़ के आदि, हमें संगी साथी चाहिए। जरा अकेले छूट जाते हैं बेचैनी होती, अकेलापन काटता है। अखबार पढ़ने लगते हैं, रेडियो खोल के बैठ जाते हैं, टेलीविजन देखने लगते हैं, रोटरी क्लब चले, लायंस क्लब चले, होटल में जाके बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे, कहीं उलझाएंगे अपने को, क्षण भर अपने को अकेला ना छोड़ेंगे। और जो अपने को अकेला नहीं छोड़ सकता, वह कभी अपने को पहचान ना सकेगा। और अपने को इतना अकेला छोड़ना होता है कि व्यक्ति तो रह ही ना जाए, विचार भी ना रह जाए, वासनाएं भी ना रह जाए, स्मृतियां भी ना रह जाए, भीतर कोई धुआं ना रह जाए, कोई उहा पोह ना रह जाए, भीतर बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाए। यूं गहन सन्नाटा, ऐसी चुप्पी कि टूटे ना टूटे। तब कहीं कोई अपने में डुबकी लगा पाता है और तब पहचान होती। उस पहचान के बाद जीवन में क्रांति हो जाती। तुम ठीक कहते हो पार्थ प्रीतम, ढूंढता हुआ तुम्हें पहुंच गया कहां कहां। वह आसान था, सभी यही कर रहे, चल पड़े खोज में निकले। ऐसे मन को सांत्वना भी मिलती रहती कि हम खोजी हैं। कोई शास्त्रों में खोज रहा है, कोई सत्यों को सिद्धांतों में खोज रहा है, कोई शब्दों की जोड़ तोड़ में खोज रहा है, कोई तर्कों के जाल में खोज रहा है, कोई पूजा में, पाठ में, अंधविश्वासों में, तरह तरह की धारणाओं में, सभी खोजी हैं इस अर्थ में। मगर शून्य में कोई भी नहीं खोज रहा है, क्योंकि जो शून्य में खोजता है तत्क्षण पा जाता है। शून्य में खोजने का अर्थ होता है खोजने वाला ही मिट जाए, तब खोज पूरी होती। ये खोज बड़ी अनूठी है, ये खोज बड़ी विरोधाभासी है। ये यूं है जैसे पानी की बूंद सागर में उतर जाए। देखा है कभी सुबह सुबह ओस की बूंद को कमल के पत्तों पर सूरज की रोशनी में चमकते हुए? अब सब सर की तप सर की। महावीर ने तो कहा ही है, आदमी का जीवन ऐसे है जैसे ओस की बूंद घास के तिनके पर सधी, जरा सा झोंका हवा का आया कि गई, जरा पत्ता कपा कि झील में डूब जाएगी। यू मृत्यु तो तुम्हें डुबा ही लेगी। मृत्यु के पहले जो डूब सकता है वही साहसी है, वही सन्यासी है। मृत्यु तो सभी को डुबाती, वो डुबाने में तुम्हारा कोई गौरव नहीं, इसलिए तुम्हें फिर लौट आना पड़ता है। डूबे भी और क्या, खाक डूबे, एक देह गई दूसरी देह मिली, इधर से डूबे उधर से उभरे, यूं मिटे यूं बने, क्षण भर नहीं बीतता। इधर लोग अर्थी सजा रहे होते, उधर तो किसी गर्भ में प्रविष्ट हो गए होते। इधर अर्थी उठ भी नहीं पाती और उधर गर्भाधान हो जाता है। क्षण भर की देर लगती, क्षण भर की भी कहनी ठीक नहीं, इधर सांस टूटी कि उधर सांस चली, यूं छलांग लगती, क्योंकि सब पुरानी वासनाएं वैसी की वैसी, पुरानी आकांक्षाएं वैसी की वैसी। वही आकांक्षाएं तुम्हें इस शरीर में ले आई थी, वही आकांक्षाएं तुम्हें नए शरीर में ले जाएंगी। कितने शरीरों में तुम रह चुके हो, कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, और वही करते हो, बार बार वही करते हो। मैंने सुना एक आदमी ने रात सपना देखा कि हीरा नाम का घोड़ा कल होने वाली घोड़दौड़ में जीतने वाला है। उसने सारे पैसे इकट्ठे किए जितने उसके पास थे, अपने मित्र को साथ लिया और कहा कि चल आज भाग्य का निपटारा है, इधर या उधर सब दांव पर लगा देना है, हीरा नाम का घोड़ा जीतने वाला है, ये मैंने सपना देखा है। और एक बार नहीं देखा, रात में बार बार देखा है, पता नहीं कितनी बार देखा है, कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये सपना सिर्फ सपना है, ये घटना होने ही वाली, मुझे भरोसा आ गया है। और इसलिए सब जितना इकट्ठा कर सकता था सब दांव पे लगा देना है, आज लखपति होकर घर लौटूंगा और तू साथ है, मित्र है, तू गवाह रहेगा। उसने अपने मित्र को कहा कि जा और ये सारा रुपया लगा दे हीरा नाम के घोड़े पर। थोड़ी देर बाद मित्र आया, पूछा उसने कि लगा दिया भाई? उसने कहा कि मैं तो हीरा पे ही लगाने जा रहा था, लेकिन जो आदमी दांव लगा रहा है, ले रहा है पैसे खिड़की पर, उसने कहा पागल हुए, ये घोड़ा कभी आया ही नहीं और ये कभी आएगा भी नहीं, मरियल घोड़ा, ये तो सदा आखिरी नंबर पे आता है, तुम होश में हो? अरे मैं तुमसे कहता हूं कि जब तुम लगाने ही चले हो, सभी दांव पे लगाने ले आए हो, तो नंबर 7 के घोड़े पे लगा दो, इसकी जीत सुनिश्चित है, बहुत बार जीत चुका है और जब भी दौड़ा है जीता है, और इसके मुकाबले कोई घोड़ा नहीं। मैं अनुभव से कहता हूं, सुमे तो नंबर 7 पे लगा आया। छाती पीट ली उस आदमी ने कि तूने भी क्या मूर्खता की, कितना मैंने तुझसे कहा हीरा पे लगाना, मगर अब जो होना था सो हो गया। और जब घोड़दौड़ का आधा घंटे में रिजल्ट आया तो हीरा आया नंबर 1। उस आदमी ने कहा देखा, लगवा दी फांसी, और वो नंबर 7 का 7 ही नंबर पे आया, 7वें नंबर पे आया, 7 ही घोड़े दौड़े थे कुल जमा। उसने करवा दिया बर्बाद, बस अब ये 1 रुपया बचा है, सुन ले जा और जाके कोका कोला ले आ, क्या पी लें और घर चले। वो आदमी गया और फेंटा लेके आ गया, तो समय ने कोका कोला खा था। उसने कहा कि वो ही आदमी फिर मिल गया। कहने लगे कोका कोला, अरे ये जहर है। न मालूम कितने लोगों को कैंसर हो चुका है, टीबी हो चुका कोका कोला के कारण। तू जानता है कोका कोला का मतलब? कोका जहर है, कोकीन। सो बात मुझे उसी जच गई। उसने कहा फेंटा ले जा, ये चीज स्वास्थ्यवर्धक है। सो मैं फेंटा ले आया। उसने कहा ठीक है, अब जो ले आया सो ठीक है, फेंटा पी लिया, अब चलें घर। चलने के पहले भूख लगी है, तो उसने चार आने पैसे, उसने कहा बस ये भी आखिरी है, सब तो तूने बर्बाद ही करवा दिया। जिस घोड़े पर कदाव न लगाया, कोका कोला का कोका कोला न लाया, ये फेंटा ले आया। अब तुम मूंगफली खरीद ला कि थोड़ा पेट में वजन पड़े और घर चलें। अब सोचें आगे का, क्योंकि सब बर्बाद हो गया। वो तो फुटाने लेके आ गया, ये तू कैसा आदमी है। उसने कहा वो ही आदमी फिर मिल गया, मैं भी क्या करूं। वो कहने लगा मूंगफली, अरे बिल्कुल सड़ी बिक रही, खरीद नहीं मत। अब मैं तो उससे अनुभव की कहता हूं, हमारा तो काम ही यही 24 घंटे, फुटाने ले जा, नए नए हैं और अच्छे, और अभी ताजे ताजे चने आए। सो मुझे उसकी बात जच गई। उस आदमी ने सिर पीट लिया। उसने कहा तू कभी सीखेगा कि नहीं। वो आदमी 3 दफा धोखा दे चुका है, बर्बाद कर दिया उस आदमी ने, उसी की मान मान के चला आता है। तुझे अकल आएगी कि नहीं। जब मैं ये कहानी पढ़ा तो मुझे लगा कि कहानी तो आदमी के बाबत थी। तुम क्या करते हो जिंदगी में? वही जो कल किया था आज, जो परसों किया था, जो पिछले जन्मों में किया है, जो बार बार किया है, और उन्हीं लोगों की बातें मानकर, वे ही आदमी तुम्हें मिल जाते। तुम ईसाई हो जाओ तो वही पादरी, और तुम हिंदू हो जाओ तो वही पंडित, और तुम मुसलमान हो जाओ तो वही इमाम और आयतुल्लाह। तुम वही करोगे, तुम कहीं भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे हिंदू मुसलमान ईसाई होने से। तुम जो भी करोगे वो मूढ़तापूर्ण ही होगा, और उसके होने का बुनियादी कारण यह है कि तुम सदा और से पूछ के करोगे, तुम्हारे भीतर तो कोई रोशनी की किरण नहीं, तुम्हारे भीतर तो कोई दिया नहीं जल रहा है, वहां तो अंधेरा छाया हुआ है। तो तुम पूछते फिरते हो, टटोलते फिरते हो, मांगते फिरते हो, और हाथ कभी कुछ नहीं लगता। एक ही बात सीखने जैसी है कि बहुत खोज लिया बाहर, अब भीतर उतरो, और भीतर भी कस्तूरी पे मत रुक जाना, क्योंकि कस्तूरी भी भीतर दिखती है तो बाहर ही, क्योंकि कस्तूरी भी अन्य है, अनन्य नहीं, वह तुम्हारी सत्ता नहीं है, तुम मृग हो। तो कस्तूरी का नाफा भी अगर तुम्हारे भीतर पड़ा है तो भी तुम उससे अलग हो, नाफा तुमसे अलग है। ये तो प्रतीक ही है जो कबीर ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे, ये तो समझाने के लिए कहा है, जैसे छोटे बच्चों को समझाते कि आ आम का, कि गा गणेश का। पहले हुआ करता था गा गणेश का, अब नहीं होता, क्योंकि अब भारतीय जो है संविधान वो धर्म निरपेक्ष है, और गणेश का कहो तो धर्म आ जाएगा, तो अब गा गधे का। क्या पतन हुआ, गणेश से गधे पे पहुंची। गणेश में ऐसी कुछ बुराई न थी, देखने में जरा उल्टे सीधे लगते हैं, फिर भी गधे से तो बेहतर ही थे। मगर गधा धर्मनिरपेक्ष, ये उसकी खूबी। न हिंदू न मुसलमान न जैन न बौद्ध, गणेश में थोड़ी धार्मिकता की गंध आती, तो गणेश नहीं चलता अब। मगर गणेश चले कि गधा चले फर्क नहीं। बच्चों के लिए कुछ चाहिए, गा सीधा नहीं सीख सकते वो, गणेश का हो कि गधे का हो, लेकिन किसी का हो। मगर फिर जिंदगी भर पकड़े मत बैठ रखना कि जब भी गा पढ़ो तो पहले कहो गा गणेश का कि गा गधे का, और फिर आगे बढ़ो, फिर जो शब्द आए वो आम का कि आ आदमी का और हा हुआ का, फिर पढ़ोगे कैसे? फिर ये आम हुआ और गणेश और गधे, इन्हीं में उलझ जाओगे। ये सिर्फ प्रतीक हैं। कबीर ये कह रहे हैं कि मृग भटकता फिरता है जंगल में और अक्सर मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि कस्तूरी मृग जो होता है बारह सिंगा होता है, उसके बड़े सींग होते हैं, और जब वो भागता फिरता है तो सींग उसके झाड़ियों में उलझ जाते हैं, उसके प्राण संकट में पड़ जाते हैं। और तुम भी कितनी झाड़ियों में नहीं उलझ गए हो, तुम्हारे भी सींग कहां कहां नहीं उलझ गए। छूटना मुश्किल हो जाता है। मैं एक प्रोफेसर को जानता हूं, वो किसी स्त्री को नहीं देखते। मेरे प्रोफेसर रह चुके, बरसा हो कि ना हो, धूप हो कि ना हो, वो छाता ही लगा के चलते, और छाता भी ऐसा लगाते कि बिल्कुल उनके सिर से लगा रहता छाता, ताकि कोई दिखाई ना पड़े, खासकर स्त्रियां। मैं उनकी कक्षा में जब विद्यार्थी था तो मेरे साथ दो लड़कियां भी थी। जब लड़कियां कक्षा में होती तो आंख ही नहीं खोलते, आंख बंद करके ही पढ़ाते। इससे मुझे तो बड़ा ही लाभ था, वो आंख बंद करके पढ़ाते, मैं आंख बंद करके सोता। कभी कभी वो देख लेते होंगे थोड़ा आंख खोल के, तो वो सोचते होंगे कि मैं भी उन्हीं के सिद्धांत को मानने वाला हूं, कि मैं भी लड़कियों को नहीं देखता। एक दिन यूं हुआ कि दोनों लड़कियां आई नहीं, मैं अकेला ही था, और मैं तो पुरानी आदत के हिसाब से, रोज के हिसाब से सोते ही था वहां नियमानुसार, तो मैं तो अपना सो गया। मैंने ख्याल नहीं किया कि लड़कियां आज आई नहीं, और वो आंख खोल के पढ़ाते रहे। जब उन्होंने देखा कि मैं अब भी आंख बंद किया हूं, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ, मुझे हिलाया डुलाया, तो मैं जरा उठा, चौंक के उठा, दोनों गारे तुम सो रहे हो क्या? तो मैंने कहा आप क्या समझते थे, इतने दिन से मैं कोई जाग रहा था? तुमको मैं तो यही सोचता था कि तुम भी लड़कियों को नहीं देखते, इसलिए आंख बंद कियो। मैंने कहा मुझे लड़कियों और लड़कों से कुछ लेना देना नहीं, आप क्यों आंख बंद किए रहते? उन्होंने कहा आज बात ही उठ गई, लड़कियां हैं भी नहीं, इसलिए तुम्हें छाता लगा के चलता हूं कि लड़कियां दिखाई ना पड़े। और लड़कियों से कभी नमस्कार भी नहीं करते थे, कोई लड़की कितनी करे मगर वो नमस्कार का जवाब भी ना दे। मैंने कहा आप जवाब भी नहीं देते। उनका क्या खाक जवाब दूं, 10 साल पहले एक लड़की का जवाब दिया था, सो अब तक भुगत रहा हूं, 5 बच्चे हो गए, खोपड़ी खाए जा रहे हैं। एक को नमस्कार का जवाब दिया था, उससे जो भूल हो गई बस वहीं ठहर गया हूं, अब आगे नहीं बढ़ सकता। न मुझे नमस्कार का जवाब देना, न मुझे किसी स्त्री को देखना, झंझट के ही काम है। ऋषि मुनि ठीक ही कह गए, फिर इस तरह लोग घबरा जाते हैं। या तो जगह जगह झाड़ियों में उलझ जाएंगे और या फिर उलझने से ऐसे घबरा जाएंगे। मगर ये घबराने में उलझना हो गया, अब ये डर में उलझ गए। अगर पहले वासना में उलझे थे तो अब भय में उलझ गए। वही उलझाव रहा, झाड़ी बदली, अब भी डरे हुए, कपे हुए, घबराए हुए। अब इस आदमी की जिंदगी तुम सोचो कैसी मुश्किल की होगी। स्त्री को देखना नहीं है, आंख बंद रखनी है, छाता लगा के रास्ते पे चलना है, बाजार नहीं जाते थे, सामान खरीदने किसी दुकान पे जाए कोई स्त्री मिल जाए तो वहां आंख बंद कर ले, जरा भद्दा मालूम पड़े। और कई दुकानों पे तो स्त्रियां सामान बेचने का काम करने लगी, वहां नहीं जाते थे, किसी होटल में ना जाएं, खाना नहीं खाएं। अगर उनकी पत्नी कभी मायके चली जाए तो वो खुद बेचारे पकाएं, उनसे खाना पकाते आए नहीं, तो बस दूध उबाल के पी लें, केला इत्यादि खा लें, किसी तरह समय व्यतीत करें। इतने भयभीत हो गए। तो कुछ तो हैं जो संसार में उलझ जाते और कुछ हैं जो संसार की घबराहट में त्याग तपश्चर्या में उलझ जाते, मगर उलझाव जारी रहता है और दोनों ही बाहर है। मेरा तुमसे कहना है उलझने का प्रश्न ही नहीं है, सिर्फ जागने की बात है, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जिसे खोज रहे हो वही तुम हो। तत्वमसि उपनिषद कहते हैं तुम वही हो, खोजने वाले में ही खोज का गंतव्य छिपा है। जरा भीतर आंख खोलो और देखो, अच्छा हुआ तुम यहां आ गए, क्योंकि यहां और किसी वाह आडंबर में उलझाने की बात नहीं। तुम कहते हो न स्वर्ग ही कुछ बोलता, हो तो बोले, स्वर्ग कहीं है थोड़ी, सुख की तुम्हारी कामना का विस्तार है। तुम यहां भी सुख चाहते हो, परलोक में भी सुख चाहते हो, सुख की वासना का विस्तार है स्वर्ग। स्वर्ग कहीं है नहीं, इसलिए तो हर एक जाति का स्वर्ग अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक जाति की सुख की धारणा अलग अलग होगी। सुख की धारणा बहुत सी चीजों पर निर्भर होती, भूगोल पर, मौसम पर। अब तिब्बती स्वर्ग को ठंडा और शीतल नहीं मान सकता, ठंड से तो परेशान है, ठंड से तो मरा जा रहा है। और भारतीय का स्वर्ग तो शीतल ही होगा, वातानुकूलित होगा। उन दोनों वातानुकूल करने की कोई सुविधा नहीं थी जब शास्त्र लिखे गए, मगर शास्त्रों में वर्णन है कि स्वर्ग में सदा ही शीतल मंद बायार बहती रहती, सदा 24 घंटे सूरज भी निकलता है तो भी ताप नहीं होती, आंच नहीं होती। अब भारती तो आंच से घबराए हुए हैं, तपे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, पकाए दे रहा है सूरज उन्हें, तो स्वर्ग में तो शीतल मंद बयार बहेगी। भारतीय स्वर्ग में, तिब्बती स्वर्ग में बड़ी ऊष्मा है, गर्मी है, होना ही चाहिए, क्योंकि तिब्बती तो बर्फ से मरे जा रहे हैं, पानी छूने में प्राण निकलते। तिब्बती शास्त्र कहते हैं साल में एक बार स्नान जरूर करना चाहिए। जो साल में एक बार स्नान जरूर करने को मानते हो, उनके स्वर्ग में शीतलमंद बयार बह सकती, वहां तो सूरज निकलता है जगमग ज्योतिर्मय, प्रकाश ही प्रकाश, और प्रकाश ही नहीं ताप ही ताप। तिब्बतियों के नरक में बर्फ जमी और बर्फ हमारे लिए तो अगर जमे तो स्वर्ग में जमनी चाहिए, शरबत वगैरह बनाने के काम में आएगी। तिब्बती नरक में बर्फ जमी, तिब्बती नरक तुम जान के हैरान होगे, वहां आग की लपटें नहीं है, हमारे नरक में आग की लपटें 24 घंटे। कहां से इतना ईंधन आ रहा है? केरोसिन की कमी अगर हो रही तो हमें लगता है कि भारतीय नरक की वजह से हो रही, और नरक भारतीयों का नीचे है और जमीन में भरा हुआ है केरोसिन पेट्रोल, तो वहीं से पाइप लगा के वो नीचे नीचे खींच लेते होंगे, ऊपर आने न दे। और नीचे उतारना सदा आसान है, सिर्फ पाइप लगा दिया कि धड़ाधड़ जलप्रपात की तरह केरोसिन और पेट्रोल टपकने लगा। ऊपर चढ़ाओ तो मशीनें लगानी पड़ती, चढ़ाने के लिए पंप बिठाने पड़ते, तब बामुश्किल चढ़ पाता है। चौबीस घंटे अनंत काल से अग्निकुंड जल रहे हैं वहां, और आदमियों को बिल्कुल पकोड़ों की तरह उबाला जा रहा है, तेल में पकाया जा रहा है, मरने भी नहीं देते, जिंदा भी नहीं रहने देते। मगर तिब्बतियों का नरक बिल्कुल बर्फ ही बर्फ जमी, वहां अगर मर के पहुंचे तो बस बर्फ में दबा दिए जाओ, ले लेना मजा ठंडक का फिर वहां पूरा, फिर ठंडक की ठंडक है अनंत काल तक। तो प्रत्येक जाति का स्वर्ग और नरक उसके सुख और दुख की कल्पना है। तुम्हें जो दुख है वो नरक बन जाता है, तुम्हें जो सुख है वो स्वर्ग बन जाता है। कहीं ना कोई स्वर्ग है, कहीं ना कोई नरक है। नरक और स्वर्ग की धारणा धार्मिक धारणा ही नहीं, मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तताओं का एक रूप है। सूफी फकीर स्त्री हुई राबिया, एक दिन लोगों ने उसे देखा, वो बाजार में भागी जाती, एक हाथ में उसने मसाल ले रखी और दूसरे हाथ में एक पानी से भरा हुआ घड़ा। लोगों ने पूछा, राबिया तू कहां भागी जा रही? मस्जिद के सामने भीड़ लगी थी, वहीं राबिया रुकी, वहीं लोगों ने पूछा, उसने कहा कि मैं जा रही हूं कि चाहती हूं तुम्हारे स्वर्ग में आग लगा दूं और तुम्हारे नरक को पानी में डुबा दूं, क्योंकि जब तक तुम स्वर्ग नरक की धारणाओं में उलझे रहोगे तब तक तुम स्वयं को न पहचान पाओगे। जो स्वयं को पहचान लेता है वहां एक तीसरा आयाम शुरू होता है जिसको हम मोक्ष कहते, निर्वाण कहते। यह शब्द दुनिया की और किसी भाषा में नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में धर्म की इतनी गहन खोज नहीं हुई जितनी गहन खोज हमने की है। जितने गहरे हम बैठे हैं, जैसी हमने डुबकी मारी है वैसा दुनिया में किसी ने भी नहीं डुबकी मारी। धर्म के मर्म को समझने में हमने जो राज खोले, हमने जो रहस्य पाए हैं वो किसी ने भी नहीं पाए। जैसे पश्चिम ने विज्ञान के राज और रहस्य पाए, ऐसे हमने धर्म के रहस्य और राज पाए। ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्म, तीन धर्म भारत के बाहर पैदा हुए। तीनों धर्मों में स्वर्ग और नरक के पार कोई बात नहीं, तीनों धर्म मनोवैज्ञानिक तल पर ही समाप्त हो जाते। भौतिकवादी वह है जो शरीर पर समाप्त हो जाता है, और ये तीनों धर्म मन पर समाप्त हो जाते हैं। भारत ने भी तीन बड़े धर्मों को जन्म दिया है, हिंदू, जैन और बौद्ध। तीनों के पास धारणा है मोक्ष की। स्वर्गो नर्क की बात की है उनके लिए जो ना समझ है, और अभी जो समझ ना सकेंगे, जिन्हें अभी आ आम का और गा गधे का बताना जरूरी, जिन्हें अभी 12 घड़ी पढ़ानी, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए स्वर्ग और नरक नहीं, उनके लिए मोक्ष निर्वाण। मोक्ष और निर्वाण बाहर नहीं है, तुम्हारे अंतरतम का नाम है, तुम्हारी आंतरिकता का नाम है। जिस दिन तुम मन से मुक्त हो जाओगे उसी दिन तुम मोक्ष को पा लिए, उसी क्षण, यहीं और अभी भी पा सकते हो। तुम कहते हो न स्वर्ग ही कुछ बोलता न नरक द्वार खोलता, हर आंख में आंख डाल तस्वीर तेरी टटोलता। वो तुम टटोलते रहो, आंख में कितनी ही टटोलो तुम्हें अपनी ही तस्वीर दिखाई पड़ेगी। आंख तो दर्पण है, उसमें तुम्हारा ही चेहरा दिखाई पड़ेगा। जितने गौर से देखोगे तुम्हारा ही चेहरा दिखाई पड़ेगा, और तुम्हारा चेहरा तुम नहीं हो। सच तो यह कि तुम्हारे असली चेहरा भी तुम भूल गए हो, मुखौटे लगा रखे, एक से एक मुखौटे लोगों ने पहन रखे, चेहरों पर चेहरे पहन रखे, और असली चेहरा भी तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो भी चेहरा तुम नहीं हो, तुम चेहरे के भीतर छिपे हो। जिसको दिखाई पड़ रहा है वह तुम हो, दृष्टा तुम हो, दृश्य तुम नहीं हो। इस सूत्र को गांठ बांध लो, दृष्टा हो तुम, दृश्य तुम नहीं हो। इसलिए जो भी दृश्य हो जाए समझ लेना कि यह मैं नहीं हूं। नेति नेति, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, कहते जाना, निषेध करते जाना, इंकार करते जाना। यूं निषेध करते करते जब वही शेष रह जाए केवल दृष्टा, दर्शन कुछ भी ना बचे, दृश्य कुछ भी ना बचे, सिर्फ ज्ञाता मात्र रह जाए, साक्षी भाव मात्र रह जाए, तब जानना आ गए मोक्ष के द्वार पर, आ गए स्वयं के द्वार पर। और उस एक को जानते ही सब जान लिया जाता है। उस एक को जानने की कला ही ध्यान, और उस जानने के लिए जो संकल्प है, उस जानने के लिए जो समर्पण है, उसका नाम सन्यास है।
आज के एपिसोड में हमने म्यूजिक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ओशो से, मनीष व्यास की एल्बम से, पुष्कर की म्यूजिकल नंबर को और देवा प्रेमल और मितिन के एल्बम से लिया गया है। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में आइए उतरते हैं कुछ साइलेंस एंड सेलिब्रेशन सॉन्ग्स के साथ।
Let the earth
the earth.